नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत गहरे उद्बोधन पर बात करेंगे
जी।
शीर्षक है उपासना, साधना और आराधना का मर्म
जी।
ये मार्च 1980 में शांति कुंज में दिया गया था।
हाँ, ये बहुत ही फाउंडेशनल विचार है गुरुदेव का।
अक्सर हम सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब बस अगरबत्ती जला ली, पूजा कर ली।
हाँ, कई लोग यही समझते हैं,
और गुरुदेव इसे एक पूरी यात्रा बताते हैं
जी।
जैसे उपासना, साधना और आराधना की एक त्रिवेणी, इसमें स्नान करना है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले उपासना
जी,
इसका क्या मतलब है?
गुरुदेव कहते हैं पास बैठना
जी,
ईश्वर के पास।
हाँ,
और ईश्वर मतलब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि श्रेष्ठ आदर्श, सद्गुण।
अच्छा,
जैसे वो उदाहरण देते हैं चंदन के पास के पेड़।
हाँ, कि वो भी सुगंधित हो जाते हैं।
या फिर आग के पास कोई लकड़ी रखें तो
वो भी आग बन जाती है। सही बात है, मतलब गुणों का असर।
बिल्कुल, पर उपासना सिर्फ पास बैठने तक सीमित नहीं है। उसका जो मूल भाव है वो है समर्पण।
समर्पण मतलब सरेंडर।
हाँ, पूरी तरह से। जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाए तो वो सागरी बन जाती है।
अच्छा,
वैसी अपनी छोटी सी हस्ती, अपना जो मैं है, उसे उन महान आदर्शों में, उस ईश्वर में विलीन कर देना।
गुरुदेव ने ग्वाल बालों या रीच बंदरों का भी उदाहरण दिया था ना?
जी हाँ, उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं थी, वो तो कृष्ण या राम के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का नतीजा थी। ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है।
हाँ, ये बात समझने वाली है।
ये तो आदर्शों से एक हो जाना है।
गुरुदेव ने तो खुद कहा कि उनकी शक्ति का स्रोत उनके गुरु के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था।
बिल्कुल, जैसे विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के प्रति था, या फिर शिवाजी महाराज का समर्थ गुरु रामदास के प्रति।
हाँ, जैसे नाव पर बैठ गए तो फिर नालिक पर पूरा भरोसा, वो पार लगाएगा।
एकदम, ये हुई उपासना की बात, समर्पण की नींव।
ठीक है, तो उपासना हो गई, अब अगला कदम साधना।
हाँ जी, साधना। और ये देखिए, ये भगवान के लिए नहीं है।
अच्छा, तो किसके लिए?
ये अपने लिए, खुद को साधने के लिए, खुद को तपाने, सुधारने के लिए।
तपाना मतलब तपस्या।
हाँ, तपस्या। जैसे सर्कस में जानवर होते हैं ना।
हाँ,
वो मालिक के इशारे पर चलते हैं, पर उन्हें वैसा बनाने के लिए साधना पड़ता है पहले, चाबुक से, नियंत्रण से। या जैसे खेत है, बीज बोने से पहले क्या करते हैं?
जोतते हैं, साफ करते हैं।
हाँ, या कपड़े को रंगना हो तो पहले मैल धोना पड़ता है।
सही बात है।
तो भगवान भी तो साफ दिल वाले को ही अपनाते हैं ना, है ना? मैले मन वाले को नहीं। साधना अपने मन को, अंतःकरण को साफ करने की प्रक्रिया है।
और इसमें मुश्किलें भी होंगी। गुरुदेव ने तीन बड़ी बाधाएं बताई हैं, वासना, तृष्णा और अहंता।
जी हाँ, वासना यानी बेकाबू इच्छाएं, तृष्णा यानी कभी न खत्म होने वाली चाहत, लालच, और अहंता मतलब मैं, मेरा, अहंकार।
ये तो नाव में छेद की तरह है, डुबा देंगे।
बिल्कुल, तो इनसे लड़ना पड़ता है। मन ना माने तो उसे साधना पड़ता है, जैसे बैल को, घोड़े को साधा जाता है, यही तप है।
इसमें फिर वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात आ जाती है।
हाँ बिल्कुल, जीभ पर कंट्रोल मतलब खाने पीने में संयम, बोलने में संयम, ईमानदारी की कमाई।
वाल्मीकि का उदाहरण भी तो है
जी। क्या वो डाकू रहते हुए राम नाम जप सकते थे? नहीं, पहले खुद को बदला, तपाया, तब जाकर वो महर्षि बने।
मतलब खुद को तपाकर ही महानता मिलती है। ठीक है,
साधना से खुद को लायक बनाना है।
तो उपासना से समर्पण सीखा, साधना से खुद को सुधारा, अब तीसरी धारा
आराधना।
आराधना
इसका सीधा सा मतलब है सेवा, लोक सेवा, समाज सेवा।
सेवा,
हाँ। गुरुदेव बताते थे कि उनके गुरु ने उन्हें एक सिद्धांत सिखाया था, बो और काटो।
बो और काटो,
हाँ। ये दुनिया, ये समाज, यही भगवान का खेत है, विराट ब्रह्म का रूप।
अच्छा,
इस खेत में हमें अपनी क्षमताएं बोनी हैं। कौन सी? अपना शरीर मतलब अपना श्रम, अपना समय, अपनी बुद्धि मतलब अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपनी भावनाएं मतलब संवेदना, प्यार, और अपना धन, जो भी संसाधन हमारे पास है।
इन सबको समाज के लिए लगाना, यही आराधना है,
यही सच्ची आराधना है। गुरुदेव का तो पूरा जीवन ही इसका उदाहरण है, एक खुली पुस्तक की तरह।
बिल्कुल,
उन्होंने अपना सब कुछ, समय, बुद्धि, भावनाएं, संपत्ति, सब समाज सेवा में ही तो लगाया।
वो दो मालियों की कहानी भी आप इसी से जुड़ती है।
हाँ हाँ, वो सुनाते थे ना, एक माली राजा की मूर्ति पूजता रहा पर बगीचा सूख गया,
और दूसरा
शायद राजा का नाम भी ना लेता हो, पर उसने बगीचे को खूब सींचा, हरा भरा रखा, तो राजा ने सम्मान किसका किया?
जिसने बगीचे की सेवा की।
बस समाज की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है,
जी,
सच्ची आराधना है।
और गुरुदेव कहते थे कि इस सेवा के बदले उन्हें बहुत कुछ मिला भी।
जी, लोगों का बेइंतहा प्यार मिला, आत्मसंतोष मिला, निर्भयता मिली, ये सब उनकी रिद्धियां थीं।
और सिद्धियां?
और दैवीय प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, हिम्मत मिली, साहस मिला, ये उनकी सिद्धियां थीं। वो कहते थे, मैं तो अपने पिता का यानी ईश्वर का वफादार बेटा हूँ जिसने उनके बगीचे मतलब इस दुनिया को संवारा है।
वाह, तो उपासना, साधना और आराधना, समर्पण, आत्म सुधार और सेवा, ये तीनों मिलकर ही जीवन को सही दिशा देते हैं।
हाँ, ये तीनों एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। गुरुदेव का जीवन और उनके विचार हमें यही सिखाते हैं।
उनका अनुभव ये भी बताता है कि अगर सही तरीके से इन तीनों को साथ लेकर चला जाए तो साधना की सफलता निश्चित है।
जी बिल्कुल, ये सिर्फ कोई कर्मकांड या रस्म नहीं है, ये तो जीवन को बदलने का, रूपांतरित करने का एक पूरा विज्ञान है, एक समग्र मार्ग है।
तो अब हम सबके सोचने के लिए सवाल ये है कि हम अपने जीवन में इन तीनों का, समर्पण का, आत्म अनुशासन का और सेवा का संतुलन कैसे बना सकते हैं।
हाँ, और आज अभी कौन सा एक छोटा सा बीज हम इस दुनिया रूपी खेत में बो सकते हैं जिससे ये दुनिया थोड़ी और बेहतर बने, यही विचारणीय है।
ओम शांति।